पर एक सवाल आया है कि एक घर में तीन चार बहुएं होती हैं, सास उनके दरमियान इंसाफ नहीं करती, तो उसके लिए क्या हुक्म है?
यहाँ ये बहू अव्वल तो सास के मातहत है या नहीं, ये तनकीह तलब है, क्योंकि बहू मातहत है अपने शोहर के। अब सास को ये जरूर चाहिए अखलाकी तौर पर कि सबके साथ हुस्ने सलूक करे, और ये एक फितरी अम्र है कि जो मतलब बहू सास की खिदमत करेगी वो अच्छी लगेगी, और जो बहू सास के सामने जबान निकालेगी वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए सारी बहुओं को चाहिए कि जिसकी तीन चार बहुएं हो ना, तो वो सास है ना, वो भी सास अगर बुढ़िया नहीं तो बुढ़िया कौन, जहर बेचारी की उम्र इतनी हो गई होगी कि चार चार बेटे उसने ब्याह दिए, अब नानी दादी, अब नाना हो गया दादा हो गया तो रिटायर हो गया, समझे बुढ़ा हो गया, हम हमारी कैटेगरी आ गई। तो अब इनको चाहिए कि बहू से बेटियों से बेटों से सबसे बना के रखे, एक ही सूरत है, शफकत शफकत शफकत, टर 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 करेंगे तो लड़ाई होती रहेगी। मेरा कोई बेटा मेरे खिलाफ नहीं है, सब मेरे से सेट है, मैं शफकत करता हूं, सिर्फ शफकत करता हूं, शफकत नहीं सिर्फ शफकत, मेरी कोई बहू मेरे खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैंने इनसे दोस्ती नहीं रखी, मैंने आज तक अपनी बहू को देखा ही नहीं है ना, मिलना जुलना या वो बेतकल्लुफी अपनी जगह पर मैंने यानी कि वो आमना सामना ही नहीं किया अभी तक, हालांकि मैं नाना दादा बन गया, मैं दूर ही रहा हूं। अगरचे पर्दा वाजिब नहीं है ससुर और बहू के दरमियान, लेकिन बेहतर है कि पर्दा रखे, इसमें आफियत है। तो मैंने आफियत का वो जो है ना रूट वो अपनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी एक नाराजगी का क्या सवाल है, अपना सामना नहीं है कोई, मतलब है नहीं, ताल्लुकात ही नहीं है इन मानोकर कि बार बार फोन पर बात, या नहीं मतलब फोन पर भी शाजो नादर कभी इक्का दुक्का कोई दो चार अल्फाज कभी किसी से हो गए हो तो वो भी कभी मतलब बिल्कुल ही मतलब तरकीब है नहीं। अब जैसे दूसरी बहू ना छोटी बहू, मेरा ख्याल इससे कभी भी मुझे याद नहीं कि फोन पर बात करने की नौबत आई, नहीं मेरे ख्याल नहीं आई नौबत, फोन पर भी बात करने की नौबत आई, बात कभी हुई नहीं मेरी। ये पता है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है और बच्चे का बाप बन गया, इतना पता है, कभी आमना सामना के बात भी आवाज भी नहीं सुनी, एक की सुनी आवाज बहुत पुरानी। एक बार वो मुझे बेटे ने मतलब फोन किया था, मैं बाहर था, ये रोती है क्या, ईद के बहाने भी मुझसे बात नहीं करेंगे, तो फिर मैंने बात की थी, मुबारकबाद दी थी, ऐसा कुछ मतलब हुआ था एक दो बार, फिर कभी दो एक बार वो बीमारी में मैंने यादत की है उनकी, कोई ने बाकायदा मेरा ट्रम्प्स नहीं है, या सलाम भेज देता हूँ वो मुझे सलाम भेज देती हैं, इस तरह हो रहा है, कभी कोई किताब भेज दी, तोहफा भेज दिया मैंने, वो होता है, ये भी वन साइड है, कभी आया नहीं है तोहफा आज तक, मैं भेज देता हूँ, किताब भेज देता हूँ, लिख देता हूँ इतने दिन में पढ़ना है, तो ये भी बाज़ वक़्त खुशखबरी आ जाती है कि हमने पढ़ ली है, ये भी एक मदद नहीं भूला कि तोहफा अभी तक नहीं आया मेरे को, मैंने भेजा है अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। बाबा बहू का
सल्लल्लाहु
क्या हुआ?
जी,
तीन बहू?
मैंने अर्ज किया ना कि अब इसमें मैं तनकी तलब है, क्योंकि शोहर के मातहत होती है वो बहू यानी बीवी होती है ना उसकी, तो उसको तो इंसाफ करे उससे, और वो इंसाफ यूं करे कि अब वो ये अदलिया तो कायम नहीं होगी, लेकिन उसको यूं करना चाहिए कि सब बहुओं के साथ हुस्ने सुलूक करे।
आइया, यहां वाडपा मतलब मसला ये है कि दो बहू को तरकीब में लेने के लिए यहां तीसरी बहू के बारे में, जैसे वो है ना, वो बहुत अच्छा पकाती है, वो बहुत अच्छा काम करती है, उसके हाथ तेज हैं, वो बहुत फास्ट काम करती है, यूं मतलब कि इनको शायद ऐसा लगता है कि अगर हम किसी दूसरी बहू की तारीफ करेंगे ना, तो ये पहली वाली इसको देकर को तेज कर देगी या वो कर देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका साइड इफेक्ट आता है, और इससे गालिबन ऐसा लगता है जैसे सास का जो मियार है या मॉरल है उसे डिस्टर्ब होता है कि ये दूसरी बहू की तारीफ करती है। तो यहां क्या करना चाहिए जिसकी दो या तीन या चार बहुएं हों, उसको कम से कम इनमें कलाम के हवाले से, क्योंकि काम का तो घर में मिलजुल कर सब करते ही रहते हैं, या अलग अलग भी रहते हैं तो साथ से कभी इधर जाना उधर जाना, इसके मिलना उससे मिलना रहता है, तो आपस की गुफ्तगु में सास को क्या एहतियात करनी चाहिए कि सास का मकाम और मियार ये इनके घरों के अंदर कायम रहे।
वो है ना अपने फकी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अम्बियुल गाफिलिन में एक हिकायत है, किसी मशहूर बुजुर्ग की हिकायत है सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह की या किसी मशहूर की, कि वो दो तबीब से इनका कुछ वास्ता पड़ा, दो तबीबों से। तो आपने फरमाया कि अगर एक तबीब की इसमें गिबत ना हो जाती ना, तो मैं कहता कि एक तबीब से वो जो वो तबीब है ना वो बहुत यानी अच्छा इलाज जानता है। और वो दोनों तबीब थे यहूदी, तो ये यहूदी और जिम्मी थे, तो जिम्मी की गिबत हराम है। जिम्मी वो होता है कि जो इस्लामी हुकूमत की पनाह में होता है और उसको जिजिया वगैरह भरता है वो, तो इसलिए उसकी इज्जत उसकी जान उसका माल इसकी हिफाजत ये गवर्नमेंट की उसमें जिम्मेदारी होती है, उनकी गीबत भी हराम थी। मगर अब दुनिया में कहीं भी कोई काफिर जिम्मी नहीं है, सब हरबी है, तो इनकी गीबत जायज है हरबी काफिर की। तो ये एक मतलब समझाने का मदनी फूल है, बहुत समझने का मदनी फूल है कि ये हकीकत है कि अगर चार बहुएं हैं तीन बहुएं हैं कि एक के बारे में कहा कि ये बहुत अच्छा पकाती है, तो इसका मतलब दो की तो काट हो ही गई ना, और वो दो अगर अल्लाह के डर से माला माल हुई खौफे खुदा वाली हुई तब तो सब्र कर जाएंगी, वरना शायद हसद में पड़ जाएंगी और सास की मुखालिफ भी हो जाएंगी, और फिर ये कि तोहमत गिबत बदगुमानी चुगली लगाई बुझाई तरह तरह के गुनाहों का एक दरवाजा खुल सकता है इसमें, यानी वो स्टो में रहेंगी कि अब ये वो मंजूर नजर बहु है, ये कभी गलती करे तो फिर इसको हम उछालें। तो ये स्टो में रहना ये भी बहुत बुरी बात है। तो इस तरह मतलब ये कि हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किसी एक की तारीफ, यानी कि आप अपने ऊपर सोचे ना, अभी कितने भाई कितने नाथखान है इस वक्त मौजूद, तीन है ना, अगर मैं बोलूं कि ये जो नीचे बैठा है ना उसकी आवाज बहुत अच्छी है, इनको पूछो क्या गुजरेगी, कुछ भी नहीं गुजरेगा, कुछ तो गुजरेगा ना, अच्छा ही गुजरेगा, चलो तो गुजरेगा तो सही ना, ऐसे तो बोलते नहीं है, दिल पे कुछ तो होगा, लगे यार अपनी आवाज ऐसी है बस, सदमा तो होगा,
ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको तस्लीम कर लेना चाहिए,
तस्लीम कर लेना चाहिए, चलो अपना कसूर नहीं है, दिल में कुछ आया तो कुछ, आपका मदनी माहौल है, मदनी जहन है, दावत इस्लामी की तो जिम्मेदारी भी है ना आपकी तो माशाल्लाह, तो ये बड़ा दिल है कि चलो भाई गीबत नहीं करनी है, ऐलान जंग है इसके खिलाफ, मगर दिल में कुछ मजा नहीं आएगा। अब भाई कितने यहाँ मुबल्लिक बैठे हुए हैं, है ना, कुछ ये भी मुबल्लिक है, ये भी मुबल्लिक, ये मेरा ख्याल अक्सरियत मुबल्लिक इनकी बेटी है। अब मैं बोलूँ यार अतर भाई का बयान इन सबसे अच्छा है, अभी सबका भाव पता चल जाएगा कि किसको हमदर्दी बोलते हैं और किसको मतलब ना खुशी बोलते हैं, किसी को गम बोलते हैं, ये सबको समझ आ जाएगी। अत्तर भाइयों के कपड़े में समाएंगे नहीं, सबका सदमे से बुरा हाल हो जाएगा। तो इनका सदमे से बुरा हाल के जिनका मदनी जहन हम उसने जन्नत तक बना हुआ है, तो वो मॉडर्न घराने, वो दीन से दूर घराने, दीनी माहौल से अमल से दूर घराने, अब इनमें अगर कोई बहू की तारीफ करे वो भी सास, जो वैसे आग पानी का तो होता ही है इनका आपस में, ऐसे में अगर ये बहू किसी एक को एक बहू को मंजूर नजर बना ले तो दूसरी बहू है तो मेरा ख्याल है रात में उठ उठ कर दुआएं मांगेगी कि या अल्लाह इस बुड्ढी को अब उठा ले, इसकी मिट्टी ठंडी कर दे। तो बहुओं इस सासों को चाहिए कि हिकमत अमली के ये मदनी फूल, अभी बेचारियां सुन भी रही हो ना, सुनती भी हैं समझती भी होंगी, यूं होता भी होगा यही करना चाहिए, मगर फिर वो कमान छूट जाती है,
इंशाल्लाह गुलदस्ता भी तो बनेगा ना
इंशाल्लाह, फिर कमान जब छूटती है ना फिर कुछ भी याद नहीं आता,
ब्रेक फेल हो जाता,
कैसा मदनी गुलदस्ता और कैसा मदनी मुजाकरा,
ब्रेक फेल हो जाता है
वहां। मैं सच बोलती हूँ झूठ थोड़ी बोलती हूँ, ये पकाना बहुत अच्छा पका दिए, ये तो जला देती है, उसको नमक का ही मतलब भान नहीं रहता कि कितना नमक डालना चाहिए, और उसको जब भी चाहे दो تو گرما گرم شربت پیش کرتی ہے، اتنی چینیاں ڈال دیتی ہے، تک ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پکاتی ہے. اب یہ جو دو تین جو ہے نا کئی کام سے
میرے گھر میں آدمی کا جو دماغ خراب ہوگا نا، تیری ماں کو سمجھا، آپ کی ماں کو سمجھا، یہ ہماری کوئی قربانی قبول ہی نہیں کرتے بابا. اس میں سے میں دوسری کام اگر کرتی بھی تو اس میں بھی تو ان کی دل شکنی تو ہے نا
جی.
کہ مطلب ہمارے کام کو کوئی اپریسیشن نہیں. اب یہ بابا آفیسز کے اندر بھی دفاتر میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس طرح کمپٹیشن پیدا کر دیں گے، لیکن عملے میں کمپٹیشن یوں پیدا نہیں کیا جاتا. آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور سیٹ اور اس طرح کے کام کرنے والوں کے لحاظ بغض اور کینے کی فضا قائم ہوتی ہے. یہ کمپٹیشن کمپیٹیٹر کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی بھی گھر کے اندر ایک ادارے کے اندر جو کمپٹیشن پیدا نہیں کیے جاتے، اس کے پیدا کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، لیکن ایک کے سامنے دوسرے کی اس طرح مطلب کہ بات کرنا کہ اگلے کو لگے یار میری عادتوں کو ان کی چیز اچھی لگی نہیں ہے، تو یہ تو ہر جگہ بابا کمزوری اور خرابی پیدا کرے گی نا، گھر ہو یا دفتر ہو یا کوئی ادارہ ہو.
بے شک.
اور جیسے کہ آپ یا کوئی بھی جیسے کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی بڑا بزرگ ہوتا ہے، یہ اگر کسی کی بابا تعریف کرتا بھی ہے نا، تو وہاں چلے کہیں کہیں کسی نہ کسی پہلو پہ جا کر کوئی مخفی قسم کا بھی کوئی عقیدت کی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آدمی صبر یا برداشت کر بھی جاتا ہے، اگرچہ اس کو مطلب بیتی ہو یا نہ بیتی ہو. مگر جس ماحول کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں تو بابا کو عقیدت اور احترام کا کوئی ایسا ساس اور بہو میں عقیدت کے سے آگے میری تو سمجھ عقیدت کہاں سے آ جائے گی. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. ویسا گھر امن کا گہوارہ بن جائے اگر یہ کفل مدینہ
لگا رہے گا،
کفل مدینہ
لگا رہے گا،
کفل مدینہ
لگا رہے گا.
ایک چپ
سو سکھ،
ایک چپ ایک چپ
پہلے تولو پھر بولو،
پہلے تولو
پھر بولو،
پہلے
تولو پھر بولو،
پہلے
تولو پھر بولو. اگر یہ تولنا آ جائے نا
ترازو ہی ٹوٹا ہوا ہے بابا، ویٹ اسکیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ترازو ہی نہیں ہے، تولے بولے گی در آپ بھی بابا.
نہیں ہے محاورہ ہے، پہلے بات پر غور کرے پھر مجھ سے نکالے.
وہ ذہن ہی نہیں ہے جو تولا، ذہن ہی نہیں ہے جو تولے بابا.
نہیں مومن کی زبان جو ہے نا وہ دل کے پیچھے ہوتی
ہے ماشاءاللہ،
وہ بولنے سے پہلے وہ دل سے گزر کے نکلتی ہے باہر، اور منافق کی زبان کے پیچھے دل ہوتا ہے. تو وہ مطلب دل کی طرف رجوع کرنے کی نوبت نہیں آتی، وہ جیسے بھی زبان پر آیا وہ فائر کر دیتا ہے، بول پڑتا ہے اور پھر بےچارا پھنستا ہے، ٹھیک ٹھاک پھنستا ہے. یہ نہ بولا ہوتا تو اچھا تھا، لیکن اب وہ تیر نکلا ہوا پلٹتا نہیں ہے. جو یہاں نہیں سمائی دو ہونٹوں میں وہ کہیں نہیں سمائی، یہ مسائل کرتی ہے.
طبیب والا کتنا پیارا مدنی پھول ہے بابا، اگر یہ ہماری عقلوں میں بیٹھ جائے.
بالکل.
کتنی غیبت سے بچنے کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کا ذہن کتنا پیارا تھا بابا، کتنی بہت اندر سے بات نکالی بابا، اور یہاں تو کوئی بچتا ہی نہیں
ہر معاملے میں. یار دیکھو شاگرد کو بھی اگر استاد بھی بولے گا نا کہ تم لوگوں میں یہ دیکھو سب سے ذہین ہے، وہ دوسرے شاگرد خلاف ہو جائیں گے.
ظرف نہیں ہے نا بابا آج ہمارا.
اب یہ دو حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، دونوں بہت اچھے عالم ہیں یہ. اب جیسے کہ میں سرات کر دوں نا کہ بھائی حسن آپ یار یہ آپ سے بڑے ان کو بولنے دیا کرو، یہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ بولیں گے کچھ بھی نہیں لیکن مزہ نہیں آئے گا ان کو. مزہ آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا. تو آہستہ آہستہ کیا پھر یہ دور ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں نا کچھ، دور ہو جائیں گے. تو اس لیے بہت ہی احتیاط. ویسے یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بولا، یہ ہمارے سمندر اتنا ظرف رکھتے ہیں ماشاء
اللہ. دعا کرے بابا اللہ ہم سب کو ظرف عطا فرمائے.
آمین. نہیں واقعی ظرف ہم لوگوں کا بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آزمائش میں نہ ڈالے. دعوت اسلامی میں دوسرا پیر جاگ جائے تو پھر میرا مطلب ظرف آئے گا سامنے کتنا ہے. ابھی تو اگر قبضہ ہے فی الحال تو، لیکن کوئی جاگ گیا اگر پھر تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے. بہت پہلے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ہیں پیری مریدی کرتے ہیں ایک صاحب، تو ایک فوجی میرے پاس وہ آیا، وہ آتا رہتا تھا. بہت پرانا واقعہ دعوت اسلامی کے بالکل اوائل کا واقعہ ہے، جن دنوں میں بسوں میں ویگنوں میں جا کر وہ علاقوں میں جا کر چوک اجتماعات کرتا تھا. فیضان مدینہ کی تعمیر بھی نہیں ہوتی، تصور بھی نہیں تھا، فیضان مدینہ کا نام بھی نہیں تھا، شاید اسلام بھائی کی ہو سکتا تھا، وہ اصطلاح بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. خیر اصطلاح بہت پہلے بن گئی تھی، وہ اس لیے میں نے اسلام بھائی اصطلاح میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں نے کہا اسلام بھائی اب میں نے بولنا شروع کر دیا کیا، کہیں دعوتی دعوتی کہنا شروع نہ کر دیں دعوت اسلامی کی نسبت سے. दावती, तो फिर बोले वो खाने पीने वाले दावती, तो इससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई नाफिज हो गया। खैर, तो वो एक आए कि वो फुला साहब हैं, जी इल्म है वो, आप यानी उनको उनको अमीर दावत इस्लामी बना दें, उनको होना चाहिए अमीर दावत इस्लामी। लब्बैक। मैंने कहा देखो, मैं थोड़ा ही टेम थोड़ा ही हुआ था, मैंने कहा देखो मैं इस तरह काम करता हूं कि अपने घर से टिफिन बक्स उठाता हूं और बाबुल मदीना के किसी इलाके में चला जाता हूं, कभी बेगन में मुर्गा बन के भी सफर करता हूं, खड़े खड़े भी सफर करता हूं, फिर वहां मैं बयान वगैरह करता हूं, मेरे लिए कोई कार नहीं आती लेने के लिए, मैं खुद पहुंचता हूं। अच्छा, फिर वो खाना निकाल कर खा लेते हैं, कभी होटल में चले जाते हैं तो कुछ खरीद कर मिक्स करके हम खा लेते हैं, काफिला जमा करके हम चले जाते हैं। काफिला भी शायद इस्तेला नहीं थी उस वक्त, तो हम ये इस तरह कर रहे हैं और इसकी वजह से लोगों का हमारी तरफ रुझू है, ये आप देख रहे हैं लोग जमा हो रहे हैं। मैं ये कर रहा हूं इसलिए नहीं, बल्कि मुझे इस तरह कामयाबी मिली है तो 150 आदमी मैंने जमा कर लिए। अब मैं ऐसे ही जज्बात में आकर किसी को सौंप दूं और कुछ हो जाए तो सारा टूट फूट का शिकार हो जाए तो क्या वो जिन साहब का आप कहते हैं क्या वो ऐसा कर लेंगे? जैसा बस में सफर करेंगे, कार उनके लिए नहीं आएगी, सफर करेंगे वो हाथ में उठाकर टिफिन जाएंगे, इस तरह काम करेंगे वो? तो रोज रोज भागना पड़ता था, कुछ हफ्ते में दिन मैंने मुख्तस कर लिए थे तो वो फिर हाँ सदर तक कन्वेंस मिले, तकरीबन सदर तक हमको कन्वेंस मिलता था 5-6 किलोमीटर रात बीच में कुत्ते भौंकते हो पैदल मार्च करेंगे वो। तो इस तरह मतलब मेरे के आमतौर पर ऐसा होता था, कभी न कभी कोई बीच में, कभी वो लाइट हाउस के पास, म्यूनिसिपल टावर के पास, कभी कोई ऐसे या अधूरे रास्ते तक कोई बस मिल भी जाती थी हम हाथ रोक लेते थे, कभी कोई लिफ्ट दे देता था कार वाला। ऐसी लूटमार नहीं थी जैसी अब है कि लोग डरते हैं, कार में बिठाते नहीं है। तो बहरहाल हम ठोकरें खाकर घर पहुंच जाते थे, बदन जवान था, हौसला भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान था, तो हम मतलब यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह थकते नहीं थे, लगे हुए थे। तो मैंने कहा ये सब करेंगे, ये इस तरह की मैंने उनको बातें की, तो वो फौजी बड़ा मतलब मैंने कहा जोश में था, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर वो करते हैं तैयार हैं तो मैं इनको आगे बढ़ा दूंगा, अमीर दावत इस्लामी का ताज इनके सर पे अपने रख देंगे और मैं इनके जूते लेकर इनके पीछे चलूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको इनके मुरीद बनाऊंगा, मैं पूरी पीरी मुरीदी से दस्तबरदार हो जाऊंगा, इनके सबको मुरीद बनाऊंगा। पीर साहब भी थे, आप बात करें जाकर, और मुझे पता था कि ऐसा होना नहीं है। तो खैर वो जब फिर मिले, तो फिर मिले ना तो उन्होंने क्या बोला पता है, कि जब मैंने ये आपकी बात पहुंचाई उनको तो इन्होंने बोला है दावत इस्लामी वाले, इनके यहां तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये तो आलिमों को घास ही नहीं डालता, तो इसमें कैसे इनमें कैसे काम करूंगा मैं। तो उसने बारह फौजी बजदन होकर आ गया और मुझे बोला कि आप सही हो करते रहो। तो ये क्या बातें करना आती है, बातें सब करना जानते हैं, बस ये कि बातों से काम नहीं होता, करने से काम होता है, अल्लाह नसीब करे। और हमारी मतलब ये कि अल्लाह करे कि हम 100 बरस के भी हो जाए हमारा हौसला बूढ़ा ना हो, ये जवान रहे बस, और हमको बस कुड़ाता रहे। अब दौड़ने का मेरा टाइम खत्म हो गया, कुड़ने का अल्लाह करे कि मेरा जो मरज है वो इससे शिफा ना मिले मुझे, दिल जलता रहे अल्लाह के दीन के लिए, मुसलमानों की इस्लाह के लिए, उम्मत की भलाई के लिए। तो वो मैं बात आई तो अर्ज कर दी कि मैंने वो ऑफर कर दी थी कि मैं इंशाल्लाह पिछड़ जाऊंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जितने भी आएंगे ना मैं सबको इनका मुरीद बनाऊंगा। ये मुरीद बनाने से मदनी काम में बहुत फायदा होता है, और दावत इस्लामी अब तक बची भी, वरना बड़ी आंधियां और तूफान आए हैं इसके राह में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरीकत की बरकत से दावत इस्लामी खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ना जितने भी जिम्मेदार हैं सब समझते हैं इसको। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد